दोस्तों नमस्कार, हिंद युग्म के आवाज पृष्ठ पे आपका स्वागत है। हिंदी को कला की हर कड़ी से जोड़ने के प्रयास का एक हिस्सा आवाज भी है। आवाज के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि पॉडकास्टिंग के विभिन्न व्यवहारिक पहलुओं का समुचित इस्तेमाल किया जा सके। इस कड़ी में हमने सबसे पहला प्रयास जो किया वो विश्व पुस्तक मेले में पॉडकास्टिंग के ही माध्यम से 10 संगीतबद्ध गीतों को तैयार करके उनका एल्बम बना करके रिलीज करके किया। वहाँ पे भी हमें बहुत सकारात्मक टिप्पणियाँ मिली। फिर हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इसे हम एक नियमित एक रेगुलर काम की तरह करें। 4 जुलाई से हमने प्रत्येक शुक्रवार को एक संगीतबद्ध गीत जारी करना शुरू किया। अभी 2 दिन पहले शुक्रवार बीता है और हमने अपना चौथा गीत जारी किया, तेरे चेहरे पे, जो एक गजल है। लोगों से बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। इसी महीने से हमने यह निर्णय लिया कि पॉडकास्टिंग के अन्य विभिन्न पहलुओं पर भी हम काम करेंगे। धीरे धीरे हम कहानियों का पॉडकास्ट प्रकाशित करेंगे, या यूं कह लीजिए प्रसारित करेंगे। सजीव जी का विचार था कि हम इसका एक सामूहिक इस्तेमाल कर सकते हैं, सामूहिक प्रयोग कर सकते हैं पॉडकास्ट कवि सम्मेलन का। तो हमने निर्णय लिया कि हर माह के अंतिम रविवार को 2 घंटे के लिए पॉडकास्ट कवि सम्मेलन किया जाए, जिसमें दुनिया में बैठे अलग अलग जगह के कवि एक मंच पे एक साथ कविताएं सुन सकें, कविताएं बोल सकें। इस प्रयास का आज ये पहला हिस्सा है। हमने जितना सोचा था हम उतना नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पे इंटरनेट अच्छी स्पीड के साथ उपलब्ध है। कहने को तो ब्रॉडबैंड है, लेकिन उसकी सुविधाएं ब्रॉडबैंड की तरह नहीं। शायद यह ख्याल हमारे दिमाग में पहले से भी था, इसलिए बहुत से कवियों से हमने रिकॉर्डिंग पहले से मंगा रखी थी। तो आज का जो प्रयोग है उसी उपलब्ध रिकॉर्डिंग के साथ हरिहर जी के संचालन में एक पॉडकास्ट कवि सम्मेलन कराने का है। हिंद युग्म का पहला पन्ना, हिंद युग्म का मुख्य पन्ना, हिंद युग्म का अंकुर पन्ना, जहां से हिंद युग्म का जन्म हुआ, वो कविता का है। मैं शैलेश भारतवासी इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को हरिहर झा जी को सौंपने से पहले हिंद युग्म के मंच पर प्रकाशित एक ताजी कविता पढ़ के करना चाहूंगा। कविता है मेरी सबसे प्यारी कविता, कवि है पावस नीर। आज सुबह कुछ यूं हुआ कि बारिश के पानी के तालाब में तैरती दिखी एक कागज की नाव। आज सुबह कुछ यूं हुआ कि बारिश के पानी के तालाब में तैरती दिखी एक कागज की नाव, और वही खड़ी ताली बजाती हंस रही थी छोटी बहन। वो नाव दरअसल एक कविता थी जो उतारी थी मैंने कागज पर कल रात ही। कविता में कई नए शब्द थे और नए भाव भी। प्रमथ्यु के दर्द की बात थी और अंधेरे उजालों की बातें थी। सफेद पोशों की धज्जियां भी थी और जिंदा जलाए जाते मुर्दों का जिक्र भी था। बातें बहुत सारी थी जहान भर की। कुछ ऐसी ही थी वो कविता जो फिलहाल तैर रही थी बारिश के जमे पानी में। गंदले शब्द धुल रहे थे उथले पानी में, और मैं देख रहा था दम साधे कि कैसे एक कविता को तैरते देख हंस रही थी मेरी सबसे प्यारी कविता। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं हम आज पॉडकास्ट कवि सम्मेलन का। मैं माइक देता हूं श्री हरिहर झा जी को।
मित्रों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पॉडकास्टिंग करने जा रहे हैं। इसमें भारत के विभिन्न भागों से कवि अपनी कविताएं बोलेंगे। मैं हरिहर झा मेलबर्न से इस समय बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले बोलेंगी नई दिल्ली से रंजना जी। जब हम तेरी महफिल से उठ जाएंगे तब तुम हमें याद करोगे दीवानों की तरह। सुनिए नई दिल्ली से रंजना जी को।
जब हम तेरी महफिल से सनम उठ जाएंगे देख लेना फिर तुझे हम बहुत याद आएंगे। जब हम तेरी ढूंढेगा फिर तू हमें दीवानों की तरह ही यहाँ ढूंढेगा फिर तू हमें दीवानों की तरह ही यहाँ हम एक साया बन के ही रह जाएंगे। देख लेना फिर तुझे बहुत याद आएंगे। जब हम तेरी छा जाएगी एक बेकरारी सी तुझ पर छा जाएगी एक बेकरारी सी तुझ पर हम तेरी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। हम तेरी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। जब हम तेरी मुझसे निगाहें बचाने की तो कोशिश ना कर मुझसे निगाहें बचाने की तो कोशिश भी न कर। तेरे वजूद को हम कई सवालों से भर जाएंगे। तेरे वजूद को हम कई सवालों से भर जाएंगे। जब हम तेरी एक तेरे प्यारे की बस आरज़ू थी हम इस जिंदगी में एक तेरे प्यारे की बस आरज़ू थी हम इस जिंदगी में। अब तेरी आंखों में अपनी चाहत की प्यास हम भर जाएंगे। अब तेरी आंखों में अपनी चाहत की प्यास हम भर जाएंगे। जब हम तेरी माना किए किससे हैं बस पल दो पल के माना कि ये किससे हैं बस पल दो पल के पर आप भी हमारे बगैर अब जी न पाएंगे। जब हम तेरी महफिल से सनम उठ जाएंगे देख लेना फिर तुझे हम बहुत याद आएंगे।
अब हम सुनने जा रहे हैं पुणे से दिव्य प्रकाश जी को। आज जिंदगी में हम जिस मुकाम पर आ गए हैं तो हमें पुरानी गलियां वो अम्मा की गोदी भला क्यों न याद आएगी। आप सुनिए पुणे से दिव्य प्रकाश जी को।
चलो आज लौटे वो गलियां पुरानी वो अम्मा की गोदी में सुन लें कहानी। चलो आज लौटे वो गलियां पुरानी वो अम्मा की गोदी में सुन लें कहानी। चलो आज बाहों में आकाश ले लें चलो आज बाहों में आकाश ले लें चलो आज चंदा की गोदी में खेलें। चलो आज मस्ती की बारिश में भीगे चलो आज मस्ती की बारिश में भीगे चलो आज बचपन की गलियों में जी लें। चलो आज कर लें वो गलती पुरानी, चलो आज कर लें वो गलती पुरानी, वो परियों के किस्से, वो दादा वो नानी, वो परियों के किस्से, वो दादा वो नानी। चलो आज लड़ लें झगड़ लें जरा सा, चलो आज लड़ लें झगड़ लें जरा सा, टीचर की डांटों से भिड़ लें जरा सा। थोड़ी शैतानी धीमे से कर लें, थोड़ी शैतानी धीमे से कर लें, शिकायत सब मम्मी की पापा से कर लें। दीदी की चोटी का झूला बना लें, दीदी की चोटी का झूला बना लें, बाहें शरारत की गले लगा लें। चलो आज पटरी पे सिक्कों को रख लें, चलो आज पटरी पे सिक्कों को रख लें, चुंबक बना लें जो अपनों को खींचे, चुंबक बना लें जो अपनों को खींचे। चलो आज साइकिल से दुनिया को नापें, चलो आज साइकिल से दुनिया को नापें, रिश्तों की दूरी को थोड़ा सा पाटें, रिश्तों की दूरी को थोड़ा सा पाटें। चलो आज मस्जिद की घंटी बजा लें, चलो आज मस्जिद की घंटी बजा लें, चलो आज मंदिर में अल्लाह पुकारें, चलो आज मंदिर में अल्लाह पुकारें, चलो आज लौटें वो गलियां पुरानी, वो अम्मा की गोदी में सुन लें कहानी, वो अम्मा की गोदी में सुन लें कहानी।
अब आप सुनिए हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से नरेश जी को, इनकी शिकायत है कि जिंदगी अब कारखानों जैसी हो गई है और ये तन्हाई ऐसी है जैसे कि टूटे मकान पड़े हों। जी हाँ, ये फीलिंग, ये भावनाएं आज कई लोग ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। तो आप सुनिए नरेश जी को।
जिंदगी बन गई है कारखानों सी, इतनी तनखा है जैसे टूटे मकानों सी, चलते ही जा रहे हैं हम इसकी तलाश में, आती नहीं पकड़ लगती है आसमानों सी। गुजरा है जब से बचपन हमारा, जिंदगी लगे जैसे कोई दास्तानों सी, वक्त इस कदर उलझा हुआ है अपने में, सामने जिसकी खुशी आती है बहानों सी, जकड़े गए नए हालातों की मजबूरियों में, उम्र अब गुजरेगी बन के कैद खानों सी, जिंदगी बन गई है कारखानों सी, इतनी तनहा है जैसे टूटे मकानों सी।
अब आपके सामने एक कवि बड़े ही झिझकते शब्दों के साथ गंभीर बात कह जाएंगे। जी हाँ, मेरा मतलब है श्री मनुज मेहता आपके लिए काव्य पाठ करेंगे।
सुनो, मैं भेज रहा हूँ तुम्हें अपने झिझकते शब्दों के साथ थोड़ा सा सावन, अंतर मन को गुदगुदा देने वाली पहली फुहार, सर्द सुबह की पहली ओस, भीगी हुई घास की हरी गुनगुनाहट, झींगुरों की अंतहीन पुकार, पक्षियों का कलरव, थोड़ा सा आकाश और एक प्राचीन कामना के साथ अपना प्रणय निवेदन।
अब आपके समक्ष एक ऐसे कवि काव्य पाठ करेंगे जो कि एक नकारात्मक सी बात शुरू करके एक बहुत ही सकारात्मक बात कह जाएंगे। मेरा अभिप्राय है श्री अभिषेक पाटनी जी आपके समक्ष काव्य पाठ करेंगे। मेरा उनसे उनकी कविताओं का परिचय तब से हुआ जब उन्होंने एक कवि की बेटी नामक कविता जो है वो उन्होंने हिंद युग्म में रखी थी। तो एक छोटी सी अखबार की खबर के ऊपर उन्होंने जो कविता बनाई और बड़ी ही मर्मस्पर्शी कविता लिखी थी। तो सुनिए अभिषेक पाटनी जी अब आपके समक्ष एक ऐसे कवि काव्य पाठ करेंगे जो कि एक नकारात्मक सी बात शुरू करके एक बहुत ही सकारात्मक बात कह जाएंगे। मेरा अभिप्राय है श्री अभिषेक पाटनी जी आपके समक्ष काव्य पाठ करेंगे। मेरा उनसे उनकी कविताओं का परिचय तब से हुआ जब उन्होंने एक कवि की बेटी नामक कविता जो है वो उन्होंने हिंद युग्म में रखी थी। तो एक छोटी सी अखबार की खबर के ऊपर उन्होंने जो कविता बनाई और बड़ी ही मर्मस्पर्शी कविता लिखी थी। तो सुनिए अभिषेक पाटनी जी।
अपने ख्वाबों के कंधों पर सिर रख कर सोने की आदत है मुझे, रात देर तक जागने की आदत है मुझे, हवा को छूना, उससे बातें करना एक फितूर सही पर आदत है मुझे। फुर्सत हर सह को उजाले में कभी मिलती नहीं, हिसाब दिन भर का लेने को रात की इजाजत है मुझे। मैं अक्सर दे आता हूं न्योता सबको, फिर दिन भर राह तकने की भी आदत है मुझे। कोई
दोस्तों, लगता है हरिहर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। ये जो बना हुआ माहौल है इसको हम न तोड़े तो अच्छा है, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे मैं बढ़ाता हूँ और अगली कवित्री को आमंत्रित करता हूँ। मुंबई से ऑनलाइन हैं अनीता कुमार। अनीता कुमार जी बहुत सक्रिय ब्लॉगर हैं, अच्छी कविताएं लिखती हैं, कई बार हिंद युग्म के मंच पर प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हीं की प्रकाशित कविताओं में से एक कविता है, मैं मास्टर चाबी हूँ, जब असल चाबी कहीं उधर इधर उधर हो जाती है, मैं काम आती हूँ, मैं वो थाली हूँ जिसमें सहानुभूति के कुछ ठीकरे बड़े सलीके से सजा कर परोसे जाते हैं, मैं वो लकड़ी हूँ जो सांप पीटने टेक लगाने के काम आती हूँ, कुछ न मिले तो हाथ सेकने के काम आती हूँ, मैं आले में सजी धूल फाँकती गुड़िया हूँ जिस पर घर वालों की नज़र मेहमानों के साथ पड़ती है। तो आइए हम बुलाते हैं अनीता कुमार जी को।
लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कविता खुली वसीयत। खामोश होने से पहले ये पटर पटर चलती जबां, सुन मेरी वसीयत बेटा, बैठ यहाँ, कुछ बातें तुझसे कहनी हैं जो मेरे मरने से पहले और मरने के बाद तुझे निभानी है। जीवन धारा सूखने लगे, करवट मोहताजी हो, आंख ना खुले, तुझसे मेरी विनती है ये रिश्ती सांसें सुइयों नलियों के हवाले ना हो, किसी की रोजी रोटी की तिकड़म का सामान ना बने, खिसका देना खटिया मेरी उस खिड़की के पास, नजरों से आलिंगन कर लूं अपनी अमराई का अंतिम बार, मेरे गालों को चूमे मंद मंद बयार, ओढ़ूं सावन की फुहार, दवाइयों की बदबू, ठंडे लोहे के बिस्तर, एसी की बासी हवा, इन अटकी सांसों को मत देना ये सजा, छूटे सांसें कटे सजा तो मेरी खुशियों में शामिल होना, किसी अच्छे से होटल में सपरिवार स्वनिमंत्रण देना, निर्जीव मिट्टी की खातिर जीवित पेड़ों की हत्या ये पाप न मेरे सर देना, ये हरियाली भविष्य की धरोहर मेरे लिए हुआ पराया, न जलाना न गाड़ना न चील कौओं को खिलाना, मुझसे न हो मैली हवा माटी ये नदिया, किसी मेडिकल कॉलेज में दान दे देना, शिक्षक थी शिक्षक हूँ निभाऊं मरकर भी शिक्षक धर्म, मेरे अंगों को चीर फाड़ के जाने बच्चे मर्ज का मर्म, जिस सखा से जीवन भर बतियाई हूँ उल्हाने दिए और मुस्काई हूँ, उससे मिलने को पंडित के श्लोकों की दरकार कहाँ, न सहेजना दीवारों पर मेरे निशान, तू मेरी जीवंत निशानी है फोटो में वो बात कहाँ, न याद कभी मुझको करना आगे बढ़ना सिखलाया तुझको, ले चली हूँ बस मैं इन एहसासों को इस मंथन को, जिसने जीवन भर सताया मुझको, अब मेरी बारी आई सजाए मौत देने की इनको।
बहुत ही संवेदनशील कविता सुनाई अनीता जी ने। चलिए इस संवेदनशील माहौल को बरकरार रखते हुए, कवित्रियों को सुनने के सिलसिले को बरकरार रखते हुए, मैं आमंत्रित करता हूँ अगली कवित्री शिवानी सिंह जी को। शिवानी सिंह हिंद युग्म की सक्रिय कवित्रियों में से हैं, हिंद युग्म को लगातार समय देती हैं, पढ़ती हैं, दूसरों को पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। आइए उन्हीं का स्वागत करते हैं।
नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है ऑपरेशन विजय। सरहद पर कुछ बादल छाए, हुआ सचेत हर हिंदुस्तानी, वो बादल नहीं मौत के साए थे, सरहद पार से घुसपैठिए आए थे वतन पर कहर बरसाने, एक ही पल में हुए सचेत, जल थल वायु सेना समेत, ना घर की चिंता, ना माँ बहनों बेटी की चिंता, ना खाने की, ना पानी की, ना सोने की, ना मौसम की, बस एक निशाना दुश्मन था, क्या क्लिफोर्ड और क्या हनीफ, क्या सौरभ और क्या गोगोई, क्या अजय और क्या विक्रम, क्या अमित और क्या सुमित, सबकी आंखों का एक निशाना, काफिर को बचकर जाने न देना, हो करगिल या हो बटालिक, टाइगर हिल हो या जुबार हिल, बजरंग चौकी या मशको घाटी, काकसर हो या द्रास सेक्टर, खाई है कसम सबने मिलकर, दम लेंगे अब दुश्मन को खदेड़ कर, बोल कर भारत माता की जय, दुश्मन पर टूट पड़े बिजली बन, एक सैनिक और 10 दुश्मन, मार गिराने का बना फिर मन, लेकर तोप गोले और बंदूक चल पड़े दुश्मन की ओर, दुश्मन का जब गोला गिरता जोश से हर सैनिक कह उठता, ये दिल मांगे मोर, 50 दिनों तक चली लड़ाई, ऑपरेशन विजय को विजय दिलाई, एक एक इंच धरती की खातिर वीरों ने छाती पर गोली खाई, वीर गति को प्राप्त हुआ इस देश की खातिर शहीद हुआ, लगाकर विजय तिलक मस्तक पर, माँ ने भेजा था सरहद पर, आज माँ के पास आया है सैनिक ओढ़ कफन तिरंगे में लिपटा, बेटा थक कर सोया है, माँ ने बेटा खोया है, पर माँ की आंखें रोती न थी, बेटे को अब सोने दो, चुप रहो न किसी को रोने दो, आओ उड़ाएं फूलों की चादर, फिर तोपों की लोरी देकर गहरी नींद में उसे सुलाएं, ये बेटे की मौत नहीं थी, वह इतिहास बन हो गया अमर, आओ हम सब भारतवासी श्रद्धा से अब सिर झुकाएं, करें नमन इस अमर वीर को जिसने प्राण किए न्योछावर, अपनी मातृभूमि की खातिर होकर खड़े तिरंगे के संग, आओ हम सब बोले मिलकर वंदे मातरम, और उस सूनी आंखों वाली माँ के करके चरण स्पर्श एक आवाज में कह डाले हम, देश के वीर सपूतों वाली ए माँ तुझे सलाम, हे माँ के वीर सपूत तुम्हें हमारा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। धन्यवाद
शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कवि सम्मेलन में भाग लिया, बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, देश की समस्या से जुड़ी हुई कविता सुनाई, देश की चिंता आपको है, हम सभी को है, हर संवेदनशील व्यक्ति देश की के बारे में भी सोचता है। चलिए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और हम अगली कविता को आमंत्रित करते हैं श्रीमती शोभा महेंद्रू जी को। श्रीमती शोभा महेंद्रू एक अध्यापिका हैं, कविताएं लिखती हैं, हिंदी उनके मंच पर पिछले 8 महीने से प्रकाशित हो रही हैं। आइए उनसे उनकी कविता सुनते हैं।
नमस्कार, एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, मन पंखहीन। मन पंखहीन चंचल विहंग विचरण करता निसीम गगन, मन पंखहीन चंचल विहंग विचरण करता निसीम गगन, तिमिरांचल में आलोक किरण, तिमिरांचल में आलोक किरण प्यासी आंखों को स्वप्न दान, अधरों पर देता स्मित हास्य, अधरों पर देता स्मित हास्य उर्मे भर देता अमर हास्य, तुम दूर बहुत मन पास पास, ध्यान दीजिएगा, तुम दूर बहुत मन पास पास, हरदम रहता है चिर विलास, ये अति पागल ये अति चंचल, ये अति पागल ये अति चंचल, पर बनता है जीवन संबर, आलोक किरण उन्माद भरा, आलोक किरण उन्माद भरा नैराश्य रिपु विश्वास सदन, कैसे इसको दूं दोष भला पीड़ा का करता संकर्ष, कैसे इसको दूं दोष भला पीड़ा का करता संकर्ष।
तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट कवि सम्मेलन। आज आपने ये पहली कड़ी सुनी, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें नित नए प्रयोग करते रहें, नए नए कवियों को जोड़ते रहें। आज जिन कवियों ने इसमें भाग लिया हम उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इसे सुना हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, और ये गुजारिश करते हैं कि गीत गजल या गाली लिख, बात मगर मतवाली लिख, गीत गजल या गाली लिख, बात मगर मतवाली लिख, गहमा गहमी बहुत हुई, अब तो खाम ख्याली लिख। रोज हथेली पर उसकी गजले मेहंदी वाली लिख, गीत गजल या गाली लिख, बात मगर मत वाली लिख। कांटे लिख चाहे जितने, फूलों की भी डाली लिख। कांटे लिख चाहे जितने, फूलों की भी डाली लिख। लिख तू भले अमावस ही, लेकिन दीपों वाली लिख। लिख तू भले अमावस ही, लेकिन दीपों वाली लिख। अधरों पर मुस्काने लिख, असली लिख या जाली लिख। गीत गजल या गाली लिख, बात मगर मत वाली लिख। मौसम अजब सुहाना है, कोई गजल निराली लिख। पूरा गुलशन चहकेगा, पत्तों पर खुशहाली लिख। पूरा गुलशन चहकेगा, पत्तों पर खुशहाली लिख। स्वागत किया बहारों का, मौसम ने हरियाली लिख। गीत गजल या गाली लिख, अपने कल पर मत इतरा, आज को गौरवशाली लिख। श्याम अलग तू दुनिया से, बातें भी अनियाली लिख। तो श्याम सखा श्याम की इसी कविता से आज का हम ये पॉडकास्ट कवि सम्मेलन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
कविता कहानी बाल रचना गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें hindyugm.com।